Good morning, everybody. Namo Buddhaya, Jai Bhim. Nasta Zalaka. I've only recently realized the importance of this question. In England, we don't ask, have you had your breakfast? We ask, did you sleep okay? But here you're more interested in your stomachs, there we're more interested in sleep. I'm sure one could have a whole PhD on cultural critique on that basis.
So,
we're looking at this topic of living wisely. And I'm approaching it so far mainly by trying to clarify what wisdom means.
और अब तक मैं इस विषय की ओर ये देखते हुए बढ़ रहा हूँ कि प्रज्ञा का अर्थ क्या होता है.
And I'm doing it by trying to look at the wise person.
और ऐसा करने के लिए एक प्रज्ञावान व्यक्ति कैसा होता है इसकी ओर हम देख रहे हैं.
And for us as Buddhists, the Buddha is the epitome of the wise person.
और बौद्ध के रूप में बुद्ध हमारे लिए एक बौद्ध व्यक्ति का नमूना है, उदाहरण है.
Good. And we looked yesterday at the Buddha's actions.
और कल हमने बौद्धों की कृति कैसी होती है देखा.
His actions which exemplified his compassion.
और उसके उनकी कृति से उनकी करुणा अभिव्यक्त होती है.
We looked at what he didn't say.
हमने देखा कि उन्होंने क्या नहीं कहा है.
He refused to fill in too much detail of his own experience.
तो उनके अपने अनुभव के बारे में बहुत कुछ वर्णन करके बताना उन्होंने टाला है.
Although I still will have more to say about that later.
इसके बाद बारे में और भी कुछ कहने के लिए मेरे पास है बाद में.
And then we were looking at the way he sees life as we know it.
और फिर हमने देखा कि वो हमारा जीवन, हम जिसको जीवन करके जानते हैं, उस जीवन की ओर वो किस तरह से देखते हैं.
And he sees it in terms of these four factors, these three marks and one other.
और ये तीन लक्षण और चौथा जो उसके साथ है, इन लक्षणों के साथ वो उसे देखते हैं.
He sees everything as impermanent.
वो देखते हैं कि सभी चीजें अनित्य हैं.
Everything as without substance, without a separate self.
तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जिसमें स्वतंत्र ऐसा स्व होता है.
As inevitably connected with suffering.
और हर चीज ऐसे नहीं तो वैसे दुख के साथ जुड़ी हुई है.
And as unattractive when compared with what is beyond that.
और उन चीजों के परे जो कुछ भी है उसके साथ जब उनकी तुलना की जाती है तो बहुत विकर्षक लगती है.
And the consequence of all this, of consequence of him seeing things in that way, is a wonderful sense of freedom.
और जब उन्होंने इन चीजों को इस रूप में देख लिया था तो उसका परिणाम ये हुआ कि वो बहुत मुक्त हो गए, स्वतंत्र हो गए.
You know that at Bodh Gaya there are various places around the Mahabodhi temple where the Buddha is supposed to have spent time.
तो आपको पता है बोधगया में जहाँ महाबोधि विहार है उसके इर्द-गिर्द बहुत सी जगह है जहाँ कहा जाता है कि बुद्ध ने उनका समय व्यतीत किया.
He is supposed to have spent about a week under the Bodhi tree.
तो बोधि वृक्ष के उन्होंने नीचे उन्होंने लगभग एक सप्ताह बिताया.
Experiencing the bliss of freedom.
और जहाँ पे वो अपनी विमुक्ति का जो आनंद है उसका स्वाद चख रहे थे.
Something so wonderful had happened to him that it took him some time to completely absorb it.
तो उनके साथ बहुत अच्छा अद्भुत ऐसा कुछ हो चुका था कि जिसे अपने भीतर समावेश करने के लिए, समावेशित करने के लिए उन्हें वक्त लगा.
He felt completely free. Nothing could bother him. Nothing could trouble him.
तो वो पूरी तरह से स्वतंत्र, विमुक्त महसूस कर रहे थे. कोई भी चीज उन्हें विचलित नहीं कर पा रही थी.
You know, of course, the story of Mara.
आपको मार की कहानी पता है.
That Mara who comes to try to push him off the seat.
तो मार जो होते हैं, मार आया था और उन्हें अपने ध्येय से विचलित करने के लिए.
Well, that symbolizes all the forces in conditioned existence that try to destabilize us.
तो मार उन बातों का प्रतीक होता है हमारे संस्कारित अस्तित्व के भीतर, वो सारी बातें जो हमें विचलित करने के प्रयास में रहती है.
But nothing could shift him.
लेकिन बुद्ध को कोई हिला नहीं पाया था.
And he touched the earth in front of him. You often see मूर्ति विद दैट जेस्चर
और उन्होंने अपने सामने की जमीन को स्पर्श किया और उस मुद्रा में भूमि स्पर्श मुद्रा में अक्सर आप मूर्तियां भी देखते
हैं दैट इंडिकेट्स दिस वंडरफुल सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ इक्विनिमिटी ऑफ बैलेंस
और वो दर्शाता है कि ये विमुक्ति का जो उनकी स्थिति थी स्थिरता की स्थिति थी संतुलन की जो स्थिति थी वो उससे निर्देशित होती है
He knew there was nothing that could bother him.
तो वो जानते थे कि ऐसी कोई भी चीज नहीं है अवशेष जो उन्हें विचलित कर सकती है
Wouldn't that be wonderful?
तो क्या ये अद्भुत नहीं है रोचक नहीं है
To be able to be in a state where you know there's nothing that can trouble you ever again.
तो ऐसी स्थिति में होना जहां आप जानते हैं कि इसके आगे कोई भी चीज अब आपको विचलित नहीं कर सकती
And he saw very clearly what was around him.
और वो बहुत स्पष्ट रूप से देख पा रहे थे कि उनके इर्द गिर्द क्या है
But he was himself untroubled by it.
लेकिन जो भी सामने था उससे वो उन्हें कोई क्षति नहीं पहुंच रही थी
And we're shown glimpses of him moving around the site of the Mahabodhi temple.
और हमें ऐसे भी चित्र बताए जाते हैं कि वो महाबोधि विहार के इर्द गिर्द घूम रहे थे
Just sort of exploring and experiencing different aspects of his release.
तो उनकी जो विमुक्ति के अलग अलग आयाम है उसका वो अनुभव ले रहे थे उसका विश्लेषण करने का प्रयास कर रहे थे
जस्ट आफ्टर ही सैट अंडर द बोधि ट्री ही वेंट टू अनदर प्लेस
तो बोधि वृक्ष के नीचे जब वो बैठे उसके बाद वो किसी और एक जगह चले गए
एंड ही जस्ट गेज्ड एट द ट्री
और वहां से वो बोधि वृक्ष को बस निहारते रहे
इन डीप ग्रेटिट्यूड टू द ट्री
और उस वृक्ष के प्रति उनके मन में बहुत कृतज्ञता का भाव था
व्हिच इज एक्स्ट्रॉर्डिनरी इजंट इट
वो बहुत ये बहुत ही अद्भुत बात है
द बुद्धा हैड गेन्ड दिस ट्रेमेंडस फ्रीडम
बुद्ध ने बहुत अपना अद्भुत ऐसा एक विमुक्ति हासिल की थी
बट दैट फ्रीडम डिडंट mean that he was cut off from everything else
lekin us swatantrata ka arth ye nahi tha ki wo baki sab se juda ho gaye the
but his relationship to the world around him was entirely positive
lekin unke ird gird jo duniya thi us duniya ke sath unka rishta bahut sakaratmak ho gaya tha
so even the tree that had sheltered him when he gained enlightenment earned his gratitude
तो फिर वो वृक्ष भी जिन्होंने उनकी बुद्धत्व प्राप्ति के दौरान उन्हें सहारा दिया था वो भी उनकी कृतज्ञता का पात्र बन गया
he felt we could say that that tree symbolized everything that had made it possible for him to gain liberation
और एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो वृक्ष उन बातों का प्रतीक बन गया उन सारी बातों का जिन्होंने उनके बुद्धत्व प्राप्ति के लिए मदद की थी
By the way, I think it's very interesting this relationship that the Buddha seems to have with trees
तो ये मेरे लिए बहुत ही रोचक बात है कि ये एक तरह से बुद्ध का रिश्ता जो वृक्षों के साथ है
And we could say it symbolizes a positive relationship with nature.
और हम कह सकते हैं कि ये निसर्ग के साथ जो एक सकारात्मक रिश्ता है उसका भी ये प्रतीक है
It's if you like the earliest environmentalism.
तो शुरुआत का जो पर्यावरणवाद है उसे आप इस रूप में देख सकते हैं
Right from the start, the Buddha felt a very positive and Well, even loving relationship with the natural world.
तो एकदम शुरुआत से ही बुद्ध बहुत सकारात्मक और एक प्यारा सा रिश्ता अपने इर्द गिर्द की दुनिया के साथ महसूस करते थे
And that's certainly something that we as Buddhists should be drawing inspiration from him.
और एक बौद्ध के नाते ये ऐसी बात है जिससे हमने भी प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए
Mother Nature, as we say in English.
तो जैसे आप निसर्ग को माता कहते हैं अंग्रेजी
में which supports us and has brought us here.
तो जो हमें सहारा देती है और जिसकी वजह से हम यहाँ पर हैं।
So the Buddha just sat there looking at the tree with great feelings of gratitude.
तो बुद्ध वहाँ से बैठे और उस वृक्ष को निहारते रहे और उनके अंदर बहुत कृतज्ञता का भाव था।
Those early weeks are very interesting in many ways.
तो ये जो उनके शुरुआत के हफ्ते थे वो बहुत तरह से बहुत रोचक ऐसे हैं।
He said that he'd realized things that had never been realized before.
तो उन्होंने ऐसा कहा कि उन्हें ऐसे चीजों की अनुभूति हुई है जिनकी अनुभूति इससे पहले प्राप्त नहीं की गई
So he got no guidelines for what he was experiencing.
तो इसलिए वो जो कुछ भी अनुभव प्राप्त कर रहे थे उन्हें अनुभव करने के लिए उनके पास कोई मार्गदर्शन उपलब्ध नहीं था
There was nobody to discuss it with, no books to read.
तो उसकी किसी के साथ चर्चा नहीं की जा सकती थी या किसी पुस्तक से भी उसके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं की
जा सकती थी। to work it out for himself, the implications of what he'd realized.
तो वो क्या अनुभव कर रहे थे और उसका क्या महत्व है ये उन्हें अपने आप ही देखना पड़ रहा था
In fact, at one point he realizes that there's nobody he can look up to.
और एक वक्त उन्हें ऐसा भी लगा कि वो किसी की और भी नहीं देख सकते मार्गदर्शन के लिए.
And he thinks that not to look up to anything is a source of pain.
और वो ऐसा कहते हैं कि अपने से ऊपर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसकी ओर आप देख सकते हैं, तो वो एक तरह से दर्द होता है.
Even the Buddha felt the need to revere.
तो बुद्ध को भी किसी को आदर्श मानने की या किसी के प्रति आदर व्यक्त करने की जरूरत महसूस हुई.
So he said, "Let me revere this Dhamma on the basis of which I've achieved liberation."
तो फिर उन्होंने कहा कि तो मैं धम्म के प्रति अपना आदर व्यक्त करूंगा जिसके सहारे मैंने वो अनुभव किया है जो मैं कर रहा हूँ, बुद्धत्व प्राप्त किया.
So he spent about 7 weeks around the Bodhi tree.
तो बोधि वृक्ष के इर्द गिर्द उन्होंने लगभग 7 हफ्ते व्यतीत किए.
Just jungle at that time, of course.
और जो उस वक्त निश्चित ही एक जंगल था.
Just sitting under a tree, reflecting.
तो सिर्फ वृक्ष के नीचे वो बैठे थे, चिंतन कर रहे थे.
Exploring fully what had opened up for him.
और उनके सामने जो कुछ दुनिया खुल गई थी उसका वो विश्लेषण कर रहे थे, उसे देख रहे थे.
And he began to reflect upon life.
और वो जीवन के ऊपर चिंतन करने लगे.
We've already seen some of the fruits of that reflection.
और उस चिंतन में से जो कुछ भी फल प्राप्त हुए थे उनमें से कुछ हम देख चुके हैं.
He's completely detached, so he's just observing everything around him.
तो वो हर चीज से जुदा हो चुके थे, इसलिए वो स्पष्ट सा सब कुछ देख रहे थे.
Although that detachment is a positive detachment.
लेकिन ये जो उनका विलगाव था, ये एक सकारात्मक विलगाव था.
It's not a cold, unemotional detachment.
तो ये ऐसा नहीं था कि जिसमें भावनाएं भरी हुई नहीं थी और वो सर्द या ठंड किस्म का था.
It's a loving detachment, you could say.
तो वो एक बहुत प्यार से भरा हुआ, प्रेम पूर्ण विलगाव था.
So he's looking with complete clarity at what's going on.
तो जो हो रहा है उसके तरफ वो बहुत स्पष्टता से देख रहे थे.
Sometimes this is described as a mirror-like wisdom.
कभी कभी इसे एक आईने की प्रज्ञा के रूप में बताया जाता है.
The mirror doesn't decide what it's going to see.
तो आईना कभी ये तय नहीं करता है कि वो क्या देखना चाहता है.
Whatever you put in front of it, it reflects perfectly.
तो आईने के सामने आप जो भी रखते हो उसे वो जैसे के तैसा वापस दिखा देता है.
So the Buddha's wisdom simply reflected what was there.
तो बुद्ध की प्रज्ञा सिर्फ वही दिखा रही थी जो है.
And one way in which he saw things was that they were all conditioned.
तो एक तरह से उन्होंने चीजों को ऐसे देखा कि वो सारी चीजें संस्कारित हैं.
They all arose in dependence on conditions.
और वो सारी चीजें जो है परिस्थितियों के आधार पर निर्माण होती है.
And without those conditions, they ceased.
और अगर ये परिस्थितियां वैसी नहीं रही तो वो चीजें नष्ट हो जाती हैं.
The later traditions say that he walked up and down. Now it's just beside the Mahabodhi temple.
और बाद की कुछ परंपराएं कहती हैं कि अभी जहां महाबोधि विहार है उसके बाजू में ही जो जगह है वहां पर वो आगे पीछे से चहलकदमी करते रहे.
You've probably seen there are those lotuses that some of them are very old indeed.
और वहां पर आप देख सकते हो कुछ कमल के चिन्ह बनाकर रखे हुए हैं जिनमें से कुछ बहुत ही प्राचीन है, पुराने.
Some of them are certainly Gupta period and some may be earlier too.
तो वो कुछ गुप्ता काल के हैं या उससे भी पहले के काल के.
But they mark the spot where the Buddha just walked up and down.
लेकिन वो उस जगह को बताते हैं जहाँ पे बुद्ध ने चहलकदमी की थी.
Just reflecting on his experience.
तो अपने अनुभव के ऊपर वो चिंतन करते हुए घूम रहे.
And we're told that that is the place where he began to clarify that everything arises in dependence on conditions.
और हमें बताया जाता है कि उस जगह पे उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया था कि हर चीज जो है वो परिस्थितियों के आधार पर निर्माण होती है.
Of course, this is very closely connected with what we saw yesterday.
और कल जो हमने देखा उसका इसके साथ बहुत ही निकट का संबंध है.
If everything is impermanent, well, on what basis does it change?
तो अगर हर बात अनित्य है तो किस आधार पर वो बदलते रहती है?
Well, it changes on the basis of conditions.
तो परिस्थितियों के आधार पर वो बदलते रहती है.
So this is the Buddha's central vision.
तो ये बुद्ध का केंद्रीय दृष्टि थी, दृष्टिकोण था.
It's not a theory.
तो ये कोई एक तत्व नहीं है.
It's what he saw.
ये वो बात है जो उन्होंने देखी थी.
Detached as he was, mirror-like as his mind was, this is what he reflected.
तो जैसे वो विलगाव की स्थिति में थे और जैसे वो आईने की तरह उनकी प्रज्ञा थी, उसमें उन्होंने ये देखा.
He saw that these conditions are there, so that arises.
तो उन्होंने देखा ये परिस्थितियां यहाँ पे हैं, इसलिए ये निर्माण हुआ है.
When these conditions go, that goes.
जब ये परिस्थितियां नष्ट हो जाएंगी तो ये भी नष्ट हो जाएगा.
And he saw this as the basis of everything.
और उन्होंने देखा कि यही सभी चीजों के मूल में है.
There's nothing that arises without conditions.
तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो परिस्थितियों के बिना निर्माण होता है.
Nothing escapes that law of conditionality.
और कार्य कारण भाव के इस नियम से कोई भी नहीं बच सकता.
This is what is called in the early tradition paticca samuppada or pratitya samutpada.
और पुरानी परंपराओं में इसी को प्रतित्य समुत्पाद भी कहा जाता है.
Dependent co-arising, it means literally.
तो एक दूसरे के आधार पर निर्माण होना.
We usually call it just dependent arising or conditioned arising.
तो हम इसे मतलब संस्कारिता के आधार पर निर्माण होना ऐसे भी कहते हैं, या एक दूसरे के आधार पर निर्माण.
Something arises in experience.
तो अनुभव में कुछ निर्माण होता है.
There are conditions that underlie or precede that arising.
लेकिन ऐसी कुछ परिस्थितियां होती है जिन परिस्थितियों के कारण जो निर्माण हुआ है वो निर्माण हुआ होता है.
This very situation.
अब ये परिस्थितियों को ले लीजिए.
Here we are, we've got a certain experience.
तो यहाँ पर हम हैं और हम कुछ अनुभव कर रहे हैं.
And this experience that we're having right now comes about because of a whole mass of preceding conditions.
लेकिन अभी जो अनुभव प्राप्त कर रहे हैं ये निर्माण हो रहा है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी परिस्थितियां हैं.
You could follow it through from any particular direction.
तो आप किसी भी दिशा से उन्हें देखना शुरू कर सकते हैं.
For instance, I'm part of those conditions.
तो जैसे कि मैं भी इस परिस्थिति का एक हिस्सा हूँ.
I had to walk up from the hut down there.
तो मुझे वहाँ पे जो हट है, मेरी कुटी है, वहाँ से यहाँ चलकर आना होता है.
I arrived here and that was part of the conditions for this present situation.
तो मैं यहाँ पे उपस्थित हुआ और ये जो वर्तमान परिस्थिति है उसका वो एक हिस्सा था.
And then that of course includes everybody else.
और उसमें सब लोग भी शामिल हैं.
So we could take it from that point of view, the human point of view.
तो एक मनुष्य के दृष्टिकोण से हम इसे यहाँ से भी देख सकते हैं.
But there are all the laws of physics and chemistry that make this whole situation appear.
लेकिन बहुत सारे भौतिक और रसायन शास्त्र के भी नियम यहाँ पे कार्यरत है जिसकी वजह से यह परिस्थिति निर्माण हुई है.
All the forces that have gone to make up this building.
तो सारी वो ताकतें ऊर्जाएं जिससे इस इमारत का निर्माण हुआ है.
And make up each and every particle of the walls.
जिसने इस दीवार के हर कण का निर्माण किया है.
Everything that arises in dependence on conditions.
हर चीज जो निर्माण होती है वो परिस्थितियों के आधार पर निर्माण होती है.
Take those conditions away, it ceases.
और उन परिस्थितियों को अगर आप हटा देते हैं तो वो चीज भी नष्ट हो जाती है.
Remove the bottom card from the house of cards, down it goes.
तो ताश के पत्तों के घर का निचला ताश खींच लीजिए और वो पूरा घर ढह जाता है.
You can't just hang a card in the middle of the air.
तो एकदम हवा के बीच में ही आप कोई ताश का पत्ता नहीं रख सकते.
It needs preceding conditions.
तो उसके नीचे भी उसकी दूसरी परिस्थितियां उसके लिए आवश्यक होती हैं.
So this is the Buddha's central insight into the nature our experience.
तो हमारे अनुभव कैसे हैं उसके बारे में बुद्ध का ये केंद्रीय दृष्टिकोण था.
Everything arises in dependence on preceding conditions.
तो हर चीज निर्माण होती है और उसके पीछे उसके कारण में दूसरी परिस्थितियां होती हैं.
And then of course it provides the conditions for something else to arise.
और फिर वो परिस्थिति दूसरी परिस्थितियों को निर्माण होने के लिए आधार प्रदान करती है.
This gathering here will perhaps change our understanding, change our perspective a little bit.
यहाँ पे इकट्ठा होने से शायद हमारा कुछ दृष्टिकोण है उसमें कुछ बदलाव आएगा.
So many conditions have brought about that.
तो बहुत सारी परिस्थितियों के वजह से ये परिस्थिति निर्माण हुई है.
When we leave here, well, we will be affected by what's happened here.
तो जब हम यहाँ से जाएंगे तो यहाँ जो कुछ भी हुआ उसके ऊपर हो सकता है हमारे ऊपर उसका परिणाम हुआ हो.
New conditions the conditions will have brought about a new arising.
तो ये जो परिस्थिति है उससे कुछ और निर्माण होगा.
So the Buddha saw life like that.
तो बुद्ध ने जीवन को इस प्रकार से देखा.
Things arising and passing away.
तो चीजें निर्माण होती है और नष्ट हो जाती है.
Arising in dependence on conditions, passing away when those conditions cease.
तो परिस्थितियों के आधार पर वो निर्माण होती है और जब वो परिस्थिति नष्ट होती है तो चीजें भी नष्ट हो जाती है.
And those the ceasing of one factor leading to the arising of another.
और एक परिस्थिति के नष्ट हो जाने से दूसरी परिस्थितियां निर्माण हो जाती है.
But it wasn't just that he saw dependent arising.
लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं था कि एक दूसरे के आधार पर निर्माण होना उन्होंने देखा था.
He saw that there were different ways in which things arise.
उन्होंने देखा कि अलग-अलग प्रकार से चीजें निर्माण होती हैं.
This is a larger topic which I'm not going to go into now.
तो ये बहुत बड़ा विषय है जिसके बारे में मैं अभी बात नहीं करूंगा.
But I want to draw attention to one particular kind of dependent arising relationship.
लेकिन एक जो विशेष तरीका है चीजों के निर्माण होने का उस तरीके के और मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ.
He saw that conditions lead to an arising in two different ways.
तो उन्होंने ये देखा कि परिस्थितियों के आधार पर जो निर्माण होता है वो दो प्रकार से होता है.
In one way, something arises and then gives rise, if you like, to its opposite.
तो कभी कभी एक चीज निर्माण होती है और वो जब निर्माण होती है तो वो अपने से विरुद्ध किसी चीज को निर्माण करती है.
So the example that's always given of this is one from our own human experience.
तो हमारे अपने मानवीय अनुभव से इसका उदाहरण अक्सर दिया जाता है.
You feel some sensory pleasure.
कभी कभी आप किसी एक इंद्रियजनक आनंद को अनुभव करते हैं.
Let's take a gulab jamun.
तो जैसे हम गुलाब जामुन का उदाहरण लेंगे.
You can supply anything you like instead of a gulab jamun.
तो गुलाब जामुन के जगह आपको जो चाहिए वो आप ले सकते हैं.
Whatever your pleasure is.
तो जिससे भी आपको आनंद मिलता है वो.
Personally, I favor chocolate, but.
तो व्यक्तिशः मुझे चॉकलेट पसंद है लेकिन
difficult to get good chocolate in India.
लेकिन भारत में अच्छा चॉकलेट मिलना मुश्किल है.
So let's stick to gulab jamun.
तो इसलिए हम गुलाब जामुन का उदाहरण लेंगे.
So you eat the gulab jamun.
तो आप गुलाब जामुन खाते हैं.
And there's a sweet taste.
और आपको एक मीठा स्वाद आता है.
A little bit of flavor of rose.
और उसका जो गुलाब का जो स्वाद होता है वो आप चखते हैं.
A very pleasing sort of stickiness in your mouth.
और उसका जो चिपचिपाहट है अच्छा जो अच्छा लगने वाला वो लगता है.
So a sensation of pleasure.
तो एक आनंद का वहाँ पे अनुभूति होती है.
Maybe even a bit of sort of mental pleasure.
या कुछ मानसिक आनंद भी उसमें हमें प्राप्त होता है.
Ah, I've got something I want.
हाँ मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया है.
So pleasure on the physical sensory level and on the mental level as well.
तो एक शारीरिक स्तर पे आनंद और कुछ मानसिक हद पे भी हमें आनंद प्राप्त होता है.
Because somebody had been talking about gulab jamun in a lecture and then when you went to lunch there were gulab jamun.
तो क्योंकि प्रवचन में कोई गुलाब जामुन की बात कर रहा था और जब आप खाने पे जाते हो तो वहाँ पे गुलाब जामुन मिल जाता है.
So there's some mental relief.
तो कुछ आपको मानसिक एक संतोष प्राप्त होता है.
By the way, don't get your hopes up.
लेकिन मैं आपको कोई उम्मीद नहीं दिला रहा हूँ.
This is just an example.
ये सिर्फ एक उदाहरण है.
Otherwise, you'll experience pain rather quickly.
नहीं तो आपको दुख का अनुभव आएगा बहुत ही जल्दी.
But yes, you experience this pleasure and a little bit of satisfaction.
तो आप ये आनंद का और संतुष्टि का थोड़ा सा अनुभव लेते हो.
But then, the gulab jamun is gone.
लेकिन उसके बाद तो फिर वो गुलाब जामुन खत्म हो गया है.
It's a little bit of an after flavor, but then that goes.
तो थोड़ा सा थोड़ी देर तक उसका स्वाद रहता है पर फिर वो भी चला जाता है.
Okay, you can go and get two more.
तो हाँ आप जा सकते हो और दो बार और ले सकते हो.
And you eat those.
और आप उन्हें भी खा सकते हो.
Some pleasure is probably less pleasure actually.
तो कुछ आनंद मिलता है लेकिन पहले से इस बार थोड़ा कम होता है.
The first bite is always the best.
क्योंकि पहला जो आप निवाला चपते हो वो हमेशा बहुत अच्छा होता है.
But you can't go on eating gulab jamun forever.
लेकिन आप हमेशा के लिए गुलाब जामुन खाते नहीं रह सकते.
Well, I certainly can't do more than about two.
मैं तो दो से ज्यादा नहीं खा सकता.
But so after some time the pleasure ceases.
और कुछ समय के बाद वो जो आनंद है वो खत्म हो जाता है.
And maybe in the case of gulab jamun it's not a very big thing.
और गुलाब जामुन के इसमें ये तो बहुत बड़ा ऐसा कोई आनंद नहीं था.
But there's some subtle sense of loss.
और फिर आपको कुछ ऐसा अनुभव होता है कि आपने कुछ खो दिया है.
Some subtle sense of painful deprivation.
तो एक सूक्ष्म स्तर पर एक दुखद और कुछ बिछड़ाव या अलगाव का अनुभूति महसूस कर.
Something you wanted, something you were enjoying, something that was pleasurable has stopped.
तो कुछ चीज आपको चाहिए थी जिसमें आपको आनंद आ रहा था, जिसका आप रस ले रहे थे, वो अब रुक गया है.
So it turns into its opposite.
तो अब वो उसके दूसरे इसमें परिवर्तित हो जाता है, विरुद्ध इसमें परिवर्तित हो जाता है.
And of course the strength of the opposite depends on the strength of the first.
और अगर ये विरुद्ध भाव जो उपस्थित हुआ है, इसकी ताकत वो पहले के इसके ऊपर निर्भर होती है.
I remember this so strongly as a child.
तो जब मैं छोटा बच्चा था, इसका मुझे बेहद सशक्त ऐसा अनुभव आया.
I even had some sort of understanding of what was going on.
और क्या हो रहा था उस वक्त, शायद मुझे थोड़ा बहुत समझ भी आ रहा था.
I'd really look forward to something.
तो कोई चीज थी वो मुझे बहुत चाहिए थी.
For instance, Christmas.
तो जैसे कि क्रिसमस का त्योहार.
क्रिसमस आई सपोज इज अ बिट लाइक दिवाली.
तो हमारे यहाँ क्रिसमस दिवाली के जैसा होता है.
लॉट्स ऑफ फूड, लॉट्स ऑफ प्रेजेंट्स, एवरीबॉडी वेरी जॉली.
तो बहुत खाना होता है, बहुत तोहफे होते हैं और हर कोई खुश होता है.
अ बिग तमाशा.
और बहुत बड़ा तमाशा होता है.
एंड एवरीबॉडी इज ऑन हॉलिडे एंड इन हॉलिडे मूड.
और सब लोग छुट्टी पे होते हैं और छुट्टी का सबका माहौल होता है.
सो आई यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू क्रिसमस फॉर मंथ्स.
तो मैं महीनों पहले क्रिसमस की जो है राह देखता था.
एंड वंस डिसेंबर केम, आई ऑलमोस्ट कुडंट कंटेन मायसेल्फ.
और जब दिसंबर आ जाता था तो मैं बस अपने आप को रोक नहीं पाता था.
25 days to go, 24 days to go, 23 days to go.
तो मैं गिनता रहता था, 25 दिन बाकी, 24 दिन बाकी है.
And then Christmas day would arrive.
और फिर क्रिसमस का दिन आ जाता था.
And it just went like that.
और ऐसे ही चला जाता था.
I'd looked forward to it so much, but it just gone.
तो मैं इतनी उसकी राह देख रहा था और वो बस चला गया था.
And I'd feel so miserable the next day.
और दूसरे दिन मुझे बहुत दुख होता था.
I thought something was going to happen, huh?
तो मैं सोचता था कुछ ना कुछ तो होने वाला है.
But it just went.
लेकिन वो बस ऐसे ही चला जाता था.
And I'd experience this quite strong sense of what we say in English, anti-climax.
तो जो anti-climax होता है वैसा कुछ भाव में महसूस करता था.
What was all that?
बस इतना ही था, ऐसा ही था.
There's a big build up and then nothing.
तो इतना हमने माहौल बनाया था और फिर वो चला गया.
Drums rolling, trumpets playing and then nothing.
तो एकदम ढोल ताशे बज रहे थे और फिर कुछ भी नहीं.
You know, the screen opens, nothing on it.
और स्क्रीन खुलती है और उसके ऊपर कुछ भी नहीं होता.
You know, you long for something, you get some pleasure from it, and then it's gone.
तो आप बहुत किसी चीज की राह देखते हो, आप उसका थोड़ा आनंद लेते हो और फिर वो चला जाता है.
So independence on your longing and your attachment arises some pain and suffering.
तो जितना आपकी राह देखने की या उसके साथ जितना आपका लगाव होता था, उसी के अनुसार दुख का भी निर्माण होता है.
That's the most essential form of conditioning that we know.
तो जो संस्कारितता का जो मूलभूत स्वरूप है, जिसे हम जानते हैं, वो ऐसा है.
Of course, there's conditioning in our bodies and in other ways.
तो हाँ, हमारे शरीर में और दूसरे तरह से भी संस्कारितता है.
But from the direct experiential point of view, this is the most significant kind of conditioning that we experience, pleasure and pain.
लेकिन अनुभव के तौर पे अगर बात करें हम, तो ये बहुत महत्वपूर्ण ऐसी अनुभूति है जिसे हम महसूस कर सकते हैं.
We get some pleasure. When that goes, we feel some pain.
तो जब हम कुछ आनंद लेते हैं और जब वो आनंद चला जाता है, तो हमें दुख का अनुभव आता है.
When we have some pain and the pain is removed, we get some pleasure.
तो जब हमें दुख होता है और जब वो दुख दूर हो जाता है, तो हमें आनंद आता है.
Goal, 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 round and round.
तो ऐसे ऐसे चलता रहता है.
And without end, really.
और इसका कोई अंत नहीं होता.
We're just chasing after the pleasure, chasing after the end of the pain.
तो हम सुख के पीछे भागते रहते हैं, हम दुख के अंत के पीछे भागते रहते हैं.
So this is one way in which conditions move.
तो ये एक तरीका है जिसमें संस्कारितता आगे बढ़ती है.
You know, plant grows, it dies, goes into the soil.
तो पौधा बड़ा जन्म लेता है, बड़ा होता है और फिर वापस जमीन में होता है.
The soil produces the nutrients for a new seed.
तो नई जो बीज होते हैं, उसके लिए आवश्यक पोषक तत्व जो है वो जमीन देती है.
राउंड एंड राउंड एंड राउंड.
और ये चक्र हमेशा चलते रहता है.
The rocks are worn away, they're carried into the sea.
तो पत्थर जो है वो घुल जाते हैं और उसकी मिट्टी बन के वो बह जाती है.
They're laid down on the seabed.
और समुद्र के तह पे वो बिखर जाती हैं।
After so many years, they form new rock.
और बहुत सारे सालों बाद वापस उसी से नए पत्थर बनते हैं।
So there's one kind of conditionality that the Buddha saw, which is circular.
तो एक प्रकार की परिस्थितियाँ या संस्कारिता बुद्ध ने देखी जो इस तरह से चक्कर में घूमते रहती हैं।
It goes on all around us.
तो वो हमारे इर्द-गिर्द हर जगह चलते रहती हैं।
The world of nature is governed by this kind of conditioning.
और निसर्ग का जो दुनिया है वो इस प्रकार के संस्कारिता पर आधारित है।
And it's a very strong force in our own minds.
और हमारे अपने मन में भी ये बहुत सशक्त ऐसी ताकत है।
A lot of the time we're just chasing our tails round and round in circles.
तो हम भी हमारी पूंछ के पीछे ही ऐसे गोल 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 चक्कर में भागते रहते हैं।
You know, sometimes dogs play with their own tails and they can't catch them.
तो कभी कभी आप देखते कुत्ते अपनी पूंछ को पकड़ने की कोशिश करते हैं घूमते घूमते लेकिन कभी नहीं पकड़ते।
Well, we're chasing our tails and we can't catch them.
तो हम भी हमारी पूंछ के पीछे घूम रहे हैं लेकिन उन्हें नहीं पकड़ सकते।
Because as soon as we get to where the tail was, it's gone somewhere else.
क्योंकि जहां पूंछ थी वहां जब तक पहुंचते तो वो कहीं और पहुंच जाती है।
This is a dominant force in our own mental life.
तो हमारी अपनी मानसिक दुनिया में बहुत ये सशक्त ऐसा ताकत है।
And a basic motivation behind our actions.
और हमारी ऊर्जाओं के पीछे हमें प्रोत्साहित करने वाली भी ये ताकत है।
But the Buddha saw another kind of conditioned process.
लेकिन बुद्ध ने दूसरे और भी तरह की संस्कारित प्रक्रियाओं को देखा था।
A kind of conditioned process in which there is growth.
तो ऐसी संस्कारित प्रक्रिया जिसमें कि वृद्धि है।
So something arises, and then on that basis something arises which is more of the same but on a higher level.
तो कुछ निर्माण होता है और उसके आधार पर कुछ और निर्माण होता है लेकिन जो पहले से थोड़ा सा उच्चतर होता है।
So for instance, there's a different kind of pleasure to the pleasure that you get from gulab jamun.
तो उदाहरण के तौर पे एक अलग प्रकार का सुख होता है जैसा सुख आपको गुलाब जामुन से प्राप्त होता है।
Perhaps the best and closest example that most of us have is in the field of cultural and artistic experience.
तो शायद बहुत करीबी अनुभव जो हम सबको पता होगा वो एक कला से प्राप्त होने वाला अनुभव के तरह होता है।
Just recently I was in Nagpur for the Buddha festival at the Dikshabhumi.
तो हाल ही में दीक्षाभूमि पर मैं बुद्ध महोत्सव के लिए वहाँ पर था।
And a very great sarod player was there.
और एक बहुत महान सरोद के वादक वहाँ पर थे।
Amjad Ali Khan, उस्ताद Amjad Ali Khan.
उस्ताद Amjad Ali Khan वहाँ पर थे।
And he gave a very good concert indeed.
और उन्होंने बहुत ही अच्छा वहाँ पे वादन पेश किया।
And undoubtedly that does give rise to pleasure.
और निश्चित ही उससे कुछ सुख की निर्मिति हुई थी।
But the pleasure you get from it is not the same as the gulab jamun.
लेकिन उससे जो आपको सुख प्राप्त हुआ था वो गुलाब जामुन से प्राप्त होने वाले सुख जैसा नहीं था।
I found that the enjoyment, the pleasure sort of continued for several days after the concert. I was still in that mood.
तो मैंने ये पाया कि वो तो वादन सरोज वादन वहाँ खत्म हुआ था लेकिन वो खत्म होने के कई दिनों बाद तक मैं उसका आनंद उठा पा रहा था और मैं उस स्थिति में था।
गुलाब जामुन टाइप कंडीशनलिटी लीड्स यू टू वांट मोर ऑफ द सेम।
तो गुलाब जामुन की जो संस्कारिता होती है उससे ये होता है कि वैसे ही किसी और चीज की चाह आपके मन में निर्माण होती है।
सरोज टाइप कंडीशनलिटी leads you a little bit beyond your ordinary experience.
लेकिन जो सरोद वादन की जो संस्कारिता होती है वो आपके सर्वसामान्य अनुभव से आपको थोड़ा ऊंचा उठा देती है।
And in that concert at times I felt I was seeing something very similar to meditation.
और वो जब सरोज वादन चल रहा था तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूँ जैसे अक्सर मैं ध्यान में भी किया करता
हूँ। Even a little glimpse of truth in the music somehow.
और उस संगीत में भी सत्य का हल्का सा झलक मैं देख रहा था।
So that's a little example of this more progressive kind of conditioning.
तो ये जो वृद्धि करती जो संस्कारिता है उसकी ये छोटा सा उदाहरण है।
In a way, from a concert like that, you come away a somewhat better person.
तो ऐसे जो मतलब कार्यक्रम होते हैं उससे आप एक थोड़ा सा बेहतर इंसान बन के बाहर निकलते हो।
You come away more at peace with the world.
और आप दुनिया के साथ एक प्रकार से शांततापूर्वक संबंध महसूस करते हो।
Your mind calm.
आपका मन शांत हो जाता है।
I was asked to say something after the concert. I just couldn't think what to say because my mind was empty.
तो उस सरोज वादन के बाद मुझे कुछ कहने के लिए कहा गया था और मैं कुछ कह नहीं पा रहा था क्योंकि मेरा मन पूरी तरह से खाली हो गया था.
I'd been sort of taken into a semi-dhyanic state.
तो एक मतलब ध्यान की जो अवस्था होती है वैसे ही कुछ अवस्था तक मैं पहुंच गया था.
So the primary distinction between those two different types of conditionalities, in the one case, it stimulates further craving.
तो ये दो तरह की संस्कारिता में अगर हम अंतर करना चाहें तो एक में अधिक तृष्णा निर्माण होती है.
You want more.
और आप अधिक के चाह रखते हैं.
It's really like a drug.
तो वो एक तरह से नशे की तरह है.
Or rather, drugs are simply a form of this kind of conditionality.
या नशा इसी प्रकार के संस्कारिता का एक प्रकार है.
You take the drug and then you want more.
तो आप नशा करते हैं और फिर आपको और चाहिए होता है.
And you have to have a bigger dose because you become accustomed to the previous one.
तो पहले के नशे की मात्रा के आप आदी हो जाते हैं इसलिए आपको और ज्यादा चाहिए होता है.
So the first kind of conditionality is bound up with craving and of course its reverse, which is hatred.
तो पहले प्रकार की जो संस्कारिता है उसका तृष्णा के साथ संबंध होता है जिससे द्वेष निर्माण होता है.
But the second type of conditionality leads you to something a bit more refined.
लेकिन दूसरे प्रकार की जो संस्कारिता है आपको अधिक शुद्ध की ओर लेकर जाती है.
And there's a lessening of craving, a lessening of self-reference.
और स्व के साथ संबंध बताना या तृष्णा उससे कम होते जाती हैं।
When you're listening to the music, you're not thinking about yourself.
जब आप संगीत को सुन रहे होते हैं तब आप स्वयं के बारे में नहीं सोच रहे होते.
You become lost in the music, in the notes.
आप उस धुन में उस संगीत में खो जाते हैं।
And at times I was watching the उस्ताद's as face.
और उस वक्त मैं उस्ताद का चेहरा भी देख रहा था.
Sitting quite close, I could see him very clearly.
तो मैं बहुत उनके नजदीक बैठा था और बहुत स्पष्टता से मैं उन्हें देख पा रहा था.
And you could see the music shining in his face.
और आप देख पा रहे थे कि जो संगीत है उनके चेहरे से चमक रहा था.
So he'd lifted up to a somewhat higher level.
तो वो स्वयं भी एक अपने से उच्च स्थिति में उठ चुके थे.
And well, I felt myself lifted up by that, and I felt the audience lifted up by that.
और उससे मैं भी अपने स्तर से ऊंचा उठा महसूस कर रहा था और श्रोता जो है वो भी ऐसे ही हैं, ऐसे ही थे.
You feel some peace.
आप कुछ शांति महसूस कर रहे हैं.
You feel more deeply in contact with yourself.
आप बहुत गहरे से अपने साथ संबंधित महसूस कर रहे हैं.
You feel the pressure of life is less.
तो आप ऐसा महसूस करते हैं कि जीवन का जो दबाव है वो कम हो गया है.
So this is an example of this kind of conditionality.
तो इस प्रकार की जो संस्कारिता है उसका ये एक उदाहरण है.
And this is the kind of conditionality that we're concerned with in following the Buddhist path.
और ये वो प्रकार की संस्कारिता है जिसका हम अनुसरण करना चाहते हैं जब हम बुद्ध के मार्ग पर आरूढ़ हैं.
We take a certain situation and we bring it on to another level.
तो हम एक परिस्थिति लेते हैं और हम उस परिस्थितियों को किसी दूसरे स्तर पर ले जाते हैं.
And from there we go to another level further on.
और उससे हम और भी आगे की किसी स्थिति में जाना चाहते हैं.
So in a word, there's growth, there's development.
तो इस तरह से यहाँ पर विकास है, वृद्धि है.
And this is the whole basis of the Buddhist life.
और बौद्ध जीवन का ये संपूर्ण आधार है.
You can say that living wisely in the end is living in accordance with this kind of conditionality.
तो आप कह सकते हैं कि प्रज्ञा के साथ जीवन व्यतीत करना यानी अंत में इस प्रकार की संस्कारिता के साथ जीवन व्यतीत करना.
The most clear example is from meditation.
तो बहुत ही स्पष्ट उदाहरण हम ध्यान का ले सकते हैं.
When you're meditating, you try to settle your mind, you try to become concentrated.
तो जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपने मन को शांत करने का प्रयास करते हैं, आप एकाग्र होने का प्रयास करते हैं.
And when you do become at all concentrated, you find great happiness arising within you.
और जब आप एकाग्र हो जाते हैं तो आप ऐसा महसूस करते हैं कि बहुत सारा सुख आपके भीतर निर्माण हो रहा है.
You find a lot of energy is released and that a very pleasurable experience.
और आप पाते हैं कि बहुत सारी ऊर्जा जो है मुक्त हो गई है और बहुत आनंददायी ऐसी संवेदनाएं हो रही है.
I hope that some of you get at least some flavor of this even during these days.
तो मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों को इन दोनों में भी ऐसा कुछ अनुभव आया होगा.
So you could say that on the basis of concentration arises some happiness, some joy.
तो आप ऐसा कह सकते हैं कि एकाग्रता के आधार पर कुछ आनंद या खुशी की निर्मिति हुई थी.
And then if you go further, that joy, that happiness becomes even greater.
और जब आप और आगे जाते हैं तो वो जो सुख है आनंद है वो और भी बढ़ जाता है.
If you go even further, it begins to calm down.
और जब आप उससे भी आगे बढ़ते हैं तो वो शांत होने लगता है.
Not that it becomes any less, but it becomes more stable, more firmly based.
ऐसा नहीं है कि वो कम जाता है, लेकिन वो संतुलित हो जाता है, स्थिर हो जाता है.
And eventually you come to the point where you can see reality.
और आप ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां पर आप वास्तविकता को देख सकते हैं.
You can see the lakshanas.
और आप लक्षणों को देख सकते हैं.
You can see conditionality.
आप संस्कारिता को देख सकते हैं.
So the Buddha saw that these two patterns, basic patterns within reality.
तो वास्तविकता के अंतर्गत बुद्ध ने इन दो प्रकार की रचनाओं को देखा था.
And he saw these as empirical facts.
और बुद्ध ने उन्हें एक ये ठोस ऐसे तथ्यों के रूप में देखा.
They're not theories after the fact. Sorry, before the fact. They're observations from the fact.
तो वो तथ्यों के पहले का कोई ऐसा सिद्धांत नहीं था, लेकिन वो वास्तविकता के आधार पर एक सिद्धांत था.
Very good. So that what the Buddha actually saw.
तो बुद्ध ने वास्तव में क्या देखा?
And from his point of view, what he wanted to do was to encourage people to follow that progressive kind of conditionality.
तो बुद्ध क्या चाहते थे कि एक प्रकार के जो वृद्धिगत होते वाली जो संस्कारिता है उसका लोग अनुसरण करें.
We're told that to begin with he thought that he couldn't really communicate what he'd seen.
तो हमें बताया जाता है कि शुरुआत में उन्हें ऐसा लगा कि जो उन्होंने देखा है उसके बारे में वो किसी को नहीं बता पाएंगे.
Because from that point of view, how to say it to anybody else?
क्योंकि उस दृष्टिकोण से जो उन्होंने देखा है वो दूसरों को वो कैसे बताएं?
People are so caught up with their gulab jamun that they can't see what he's saying.
लोग अपने गुलाब जामुनों में इतने उलझे हुए हैं कि वो नहीं देख पाएंगे.
But we're told that he had a sort of vision.
लेकिन हमें बताया जाता है कि उन्हें एक दृष्टांत प्राप्त हुआ.
He saw the whole world as if it was a pool of lotuses, full of lotuses.
तो उन्होंने देखा कि जैसे पूरी दुनिया एक कमल का दल, कमल दल है.
And he saw that some of the lotuses were buried deep in the mud.
और उन्होंने देखा कि कुछ कुछ कमल के फूल ऐसे हैं जो बहुत कीचड़ में फंसे हुए हैं.
Some of them were pushing up a little bit from the mud in the water.
कुछ कुछ उस दलदल में से अपने आप को थोड़ा सा ऊपर लेकर आए हैं.
Some had come above the surface of the water.
और कुछ तो इस पानी के सतह से थोड़ा ऊपर आए हैं.
And some of them were a little bit open.
और उसमें से कुछ है कलियां जो थोड़ी सी खिली हुई हैं.
So he realized that there were some people were a little bit open. To whom he could communicate.
तो उन्हें ऐसा लगा कि हाँ थोड़े से लोग ऐसे हैं कुछ जो थोड़े खुले हुए हैं और जो उनकी बात सुन सकते हैं.
And he began with those sort of people.
और उन लोगों के साथ उन्होंने शुरुआत की.
Then he created a whole path, a whole sangha, which would help more and more people to grow up through the water.
और फिर उन्होंने एक मार्ग निर्माण किया, एक संघ का निर्माण किया जो उन अन्य लोगों की सहायता कर सकता था कि जो उस पानी से बाहर आ सकते थे.
There's a very important aspect of wisdom.
और ये प्रज्ञा का बहुत महत्वपूर्ण ऐसा आयाम है.
To see that there is a cyclic kind of conditionality which goes nowhere.
तो ये देखना कि एक चक्राकार भी ऐसी संस्कारिता है जिसका अंत कहीं पर भी नहीं होता.
And to see that there is a progressive kind of conditionality which leads to greater and greater happiness and joy.
और दूसरी भी एक वृद्धिगत होती संस्कारिता है जो अधिक से अधिक सुख की ओर ले जाती है.
Greater and greater skillfulness in moral terms.
नैतिक दृष्टिकोण से कहा जाए तो अधिक से अधिक कुशलता की ओर.
And greater clarity of mind.
और अधिक से अधिक मन की सुस्पष्टता की ओर.
So that one can see.
ताकि कोई देख सके.
As the Buddha saw.
जैसे बुद्ध ने देखा था.
And these two kinds of conditionality are basic working ground.
और ये दो प्रकार की जो संस्कारिताएं ये हमारे लिए वो भूमि जहाँ पे हम काम कर सकते हैं.
Brothers and sisters, we are caught up in both.
और भाइयों बहनों हम दोनों में फंसे हुए हैं.
To some degree, we're caught up. We're to a large degree, probably, we're caught up in the wheel.
तो बहुत हद तक हम इस चक्राकार चक्कर में फंसे हुए हैं.
But we've got some sense of these higher possibilities.
लेकिन हमें थोड़ा सा ये अनुभूति है कि और भी कौन सी क्षमताएं हमारे सामने हैं.
We've got some experience of moments where We experience a happiness which is not based on craving.
तो हमारे पास कुछ कुछ ऐसे क्षण आते हैं जिसमें हम उस आनंद का उपभोग लेते हैं जो तृष्णा पर आधारित नहीं होता है.
For instance, you experience it in friendship.
जैसे कि जो आपको मैत्री में अनुभव आता है.
In real friendship, where there's no attachment, wanting something from the other person.
तो एक सही दोस्ती में जहाँ पे कोई आसक्ति नहीं होती या दूसरे इंसान से आपको कुछ चाहिए नहीं होता.
But real mutual concern, mutual consideration, mutual maitri.
लेकिन दोनों का एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है, एक दूसरे की चिंता होती है, एक सच्ची मैत्री होती है.
Sometimes when you share with a friend, you experience yourself as going beyond your self-attachment.
और जब कभी आप अपना सुख दुख अपने दोस्त के साथ बांटते हो तो आप पाते हो कि आप स्व आसक्ति से कुछ आगे बढ़ रहे हैं.
Sometimes when you think and think very clearly, you get a sense of breaking through to another level.
कभी कभी आप सोचते हैं और गहराई से सोचते हैं तो आप को एक मुक्त होने का और एक दूसरे स्तर पे पहुंच जाने का अनुभव आता है.
I think one of the most common ways in which we experience this is in aesthetic pleasure.
तो जो सौंदर्यात्मक जो हमें आनंद आता है उसमें हमें अक्सर इस प्रकार का आनंद आता है.
You know, we're out here in nature.
हम यहाँ पर निसर्ग के मध्य में हैं.
Just to be in the midst of nature like this is pleasurable.
तो इस तरह के निसर्ग में के मध्य में होना भी बहुत आनंद प्रदान करने
वाला है. But it's not the sort of pleasure that leads you to crave.
लेकिन ये इस प्रकार का आनंद नहीं है कि जिससे आपके मन में तृष्णा उत्पन्न हो.
Or rather, it doesn't necessarily have to be one that leads to craving.
या ये ऐसा नहीं होगा, जरूरी नहीं कि इससे आपके मन में तृष्णा हो.
Of course, you can try to buy nature or something like that.
लेकिन हो ये भी हो सकता है कि आप उस निसर्ग को खरीदना चाहें.
But truly appreciating nature is completely selfless.
लेकिन एक तरह से निसर्ग की सराहना करना जो होता है वो एकदम स्वार्थ से रहित होता है.
And probably most people have experienced that at some time and even quite deeply.
और अक्सर बहुत से लोगों ने कई बार इसे अनुभव किया है और बहुत गहराई से अनुभव किया है.
You go up to the top of the fort there.
आप उस किले के चोटी पे वहाँ पे पहुँचते हो.
And you look at the vast landscape.
और आपके इर्द-गिर्द जो भूखंड है, जमीन है उसकी, और आप देखते हो.
These really wonderful shapes of the western ghats.
तो ये जो पश्चिमी जो घाट है उसके बहुत अलग अलग आकार आपको नजर आते हैं.
And over that side is miles of jungle.
और उस तरफ जब आप देखते हो तो मीलों तक जंगल फैला हुआ है.
You feel completely different as you're contemplating it.
और जब आप उस विषय में चिंतन करते हो तो आप बहुत ही अलग महसूस करते हो.
Particularly strong sense of peace.
और बहुत ही सशक्त ऐसे आनंद की शांति की अनुभूति होती है.
You don't want anything, you don't need anything, you're just happy to enjoy this scene.
तो आपको कुछ चाहिए नहीं होता है, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं होती और आप सिर्फ उसका आनंद उठाते.
And you feel a sort of at peace with everything around you.
और आपके आजू बाजू जो भी है उसके साथ है, आप बहुत शांति महसूस करते.
Even something of maitri.
कुछ आप मैत्री का भी अनुभव करते.
So I think nature is probably the most powerful and immediate experience we get of this kind of small transcendence.
तो ये थोड़ा सा जो ऊपर उठने का अनुभव है उसका थोड़ा सा अनुभव जो है हम निसर्ग से ले सकते हैं.
And yes, we get it with aesthetic experience through art.
और सौंदर्यात्मक तरह से कला के माध्यम से भी हम ये अनुभव ले सकते हैं.
Not necessarily even the highest and greatest.
तो जरूरी नहीं है कि ये कला बहुत उच्च स्तर की हो या बहुत महानतम ऐसी हो.
But music draws us out of ourselves.
लेकिन संगीत जैसे कि वो हमें हमारे भीतर से खींच लाता
है. We experience things on a somewhat higher level.
और एक हमसे उच्च स्तर पे हम चीजों का अनुभव लेते हैं.
The greater the musician, the greater the art, the higher the level you experience.
तो जितना महानतम वो संगीतकार है, जितनी महानतम वो कला है, उतना अधिक आपको उसमें आनंद आता है.
The same with poetry, the same with painting, sculpture, whatever.
तो ऐसा ही काव्य के साथ है, चित्रकला के साथ है, मूर्ति कला के साथ है.
If the artist is at all skilled and has some values, that will communicate.
तो अगर उस कलाकार में कौशल्य है, उसके कुछ मूल्य है, तो निश्चित ही वो उसके माध्यम से व्यक्त होंगे.
So probably everybody's got some experience of that kind of conditionality.
तो इस प्रकार की जो संस्कारिता है उसका निश्चित ही हमने थोड़ा बहुत अनुभव लिया है.
So the Buddha taught that that's not just temporary.
तो बुद्ध ने कहा कि ये सिर्फ तात्कालिक नहीं है.
It can go on.
तो ये आगे बढ़ते रह सकता है.
Usually what happens is that we have some experience like that and we go up a bit.
तो अक्सर होता क्या है कि हमें थोड़ा ऐसा अनुभव आता है, हम उसके साथ थोड़ा आगे जाते हैं.
Then life takes over.
और फिर जीवन हमें अपने साथ बहा ले जाता है.
And the wheel turns again.
और वो चक्कर जो है फिर शुरू हो जाता है.
But the Buddha taught that this progression can continue.
लेकिन बुद्ध ने हमें ये कहा कि ये जो वृद्धि है ये निरंतर चलते रह सकते.
And at the end of that progression is the experience to which he awakened.
और उसके अंत में, उस वृद्धि के अंत में वो अनुभव है जिस अनुभव के लिए वो जागृत हो गए थे.
That's how Buddhas arise.
और ऐसे ही बुद्ध निर्माण होते हैं.
They arise by using this progressive kind of conditionality.
तो ये जो वृद्धिगत होने वाली संस्कारिता है इसका इस्तेमाल करते हुए वो जागृत होते हैं.
You know, if you want to split the atom, you have to use the laws of physics.
तो अगर आपको किसी अणु को तोड़ना है तो आपको भौतिक शास्त्र के नियमों का इस्तेमाल करना पड़ता है.
If you want to cure a disease, you have to use the laws of biology.
अगर आपको किसी रोग को अच्छा करना है तो आपको जीव शास्त्र के नियमों का इस्तेमाल करना होता है.
If you want to become a Buddha, you need to use this progressive kind of conditionality.
और अगर आपको बुद्ध बनना है तो आपको इस प्रकार के वृद्धिगत होती संस्कारिता का इस्तेमाल करना पड़ता है.
And it's this that we call the Dhamma.
और इसी को हम धम्म कहते हैं.
The Dhamma is using these natural processes in order to help us to develop.
तो इन स्वाभाविक प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करना ताकि हम बेहतर बन सके उसको हम धम्म कहते हैं.
This kind of conditionality is just part of reality.
तो इस प्रकार की जो संस्कारिता है ये वास्तविकता का ही एक हिस्सा है.
Just as gravity is part of reality, etc.
जैसे गुरुत्वाकर्षण वास्तविकता का एक हिस्सा है और भी बहुत बातें.
In the same way, there is the possibility of progression.
और उसी तरह वृद्धिंगत होने की भी एक संभावना होती है.
Just as there's a possibility of something falling to the ground.
वैसे ही जैसे किसी चीज के नीचे गिरने की संभावना होती है.
And our whole art in the Buddha Dhamma is to harness the force of this progressive conditionality.
और हमारी बौद्ध धर्म में जो पूरी कला है वो इसी के पीछे है कि इस संस्कारिता को हम बढ़ाते रहे, विकास करते रहे.
So part of the Buddha's wisdom was to see the connection between the world that most of us inhabit most of the time and his experience.
तो बुद्ध का काम का अक्सर था कि देखना कि किस प्रकार के जग में हम रहते हैं और कहां पर वो है.
He saw that you could from within this conditioned situation find the way out.
तो उन्होंने ये देखा कि इस संस्कारित अस्तित्व की दुनिया में से आप बाहर एक रास्ता खोज सकते हैं.
And that's what he spent his life teaching.
और इसी को सिखाने में उन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया.
And that's what crores and crores of Buddhists since have practiced and taught to others.
और तब से लेके करोड़ों बौद्धों ने उसी का आचरण किया है और उसी बात को सिखाया है.
And that's what I'm passing on to you today as best I can.
और जितना मुझसे अच्छे से हो सका उतना अच्छे से आज मैं भी आपको वही बता रहा हूँ.
We're hearing the Buddha's wisdom, albeit through my poor lips.
तो आप जो है बुद्ध की प्रज्ञा को मेरे होठों से सुन रहे हो.
And we're seeing that it can apply to us.
और आप हम ये देख रहे हैं कि ये हमारे जीवन पर भी लागू हो सकता है.
Conditionality is conditionality.
संस्कारिता संस्कारिता है.
It's conditionality in 2015.
तो 2015 में भी वो संस्कारिता है.
And it was conditionality 2,500 years ago.
और 2,500 साल के पहले भी वो संस्कारिकता ही थी.
It is 2015, isn't it? Yes.
अभी 2015.
I always compensate and go to 2016, but it's 2015.
तो मैं अक्सर 2016 तक पहुंच जाता हूँ, लेकिन ये 2015 है.
I've lived long enough for these years to go so quickly that you forget where you are.
तो मैंने इतना जीवन व्यतीत कर लिया है कि मैं भूल जाता हूँ अभी कौन सा वर्ष मैं बिता रहा हूँ.
But conditionality is the same now as it was then.
तो संस्कारिता अब भी वैसी ही है जब वो वैसी थी तब वो जैसी थी.
Wherever you are,
चाहे कहीं भी आप हो,
English, Indian,
अंग्रेज हो, भारतीय हो,
living now, living in the past,
अभी शायद जी रहे हो, भूतकाल में जी रहे थे.
Conditionality is conditionality.
संस्कारिता संस्कारिता ही है.
The Buddha himself said that Whether Buddhas arise or not, one thing is sure.
तो उन्होंने कहा कि भले ही बुद्ध निर्माण होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन एक बात निश्चित है.
Conditionality, independence on this, that arises.
संस्कारिकता की इसके आधार पर वो निर्माण होगा.
He is saying that don't just take my word for it, look and see.
और उन्होंने ये कहा कि सिर्फ मेरे शब्दों को प्रमाण मत मानिए, लेकिन आप देखिए, उसका अनुभव लीजिए.
So living wisely in the end means trying to catch the winds that carries you up the progressive kind of conditionality.
तो प्रज्ञा के साथ जीवन व्यतीत करना यानी उस बात को देखना या थामना जो आपको संस्कारिता की ओर लेकर जाते हैं.
And we have to do it in the midst of our ordinary lives.
और हमारे रोजमर्रा के जो साधारण जीवन है उसके मध्य में रहकर हमें ये करना होता है.
And for most people that means family, job, etc.
और बहुत से लोगों के लिए इसका अर्थ है परिवार के बीच में, नौकरी के बीच में और भी कई बातें.
It's quite clear that that possibility is still before you, whatever your conditions.
लेकिन एक बात फिर भी है कि चाहे जो भी आपकी परिस्थितियां हैं, ये संभावना फिर भी आपके सामने उपस्थित है.
It's possible to grow.
विकास करना मुमकिन है.
But the main thing we need to try to do is to catch the point where we can either go round or grow.
लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि उस बिंदु को हमें पकड़ना आना चाहिए जहां से या तो हम गोल जा सकते हैं या तो फिर ऊपर की ओर जा सकते हैं.
But you're going to have to wait for that.
लेकिन उसके लिए आपको राह देखनी पड़ेगी.
You're just stuck at the moment, somewhere between the two.
तो अभी आप वहीं पे खड़े हो कि इधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं.
This afternoon I'll try to examine much more closely where that point of departure lies.
तो आज के दोपहर में मैं बहुत करीब से देखने का प्रयास करूंगा कि हमारे प्रस्थान का वो जो बिंदु है वो कहाँ पर है.
Where, how we work with these two different kinds of conditionality in our own experience.
तो हमारे अपने अनुभव के भीतर ये जो दो प्रकार की संस्कारिता है उसके साथ हम किस प्रकार से कार्य करते हैं.
Because it's that is living wisely.
क्योंकि ये वो है जिसे हम प्रज्ञा के साथ जीवन व्यतीत करना कहते हैं.
So I hope that you've got some clear idea of what I'm talking about.
तो मुझे लगता है कि आपको शायद कुछ स्पष्ट कल्पना आ गई होगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ.
The Buddha from his completely detached position saw everything as conditioned.
तो अपनी बहुत ही अलग स्थिति से बुद्ध देख रहे थे कि सारी चीजें जो है वो संस्कारित हैं.
He was not identified with any conditioned thing.
और किसी भी संस्कारित चीज के साथ उन्हें नहीं पहचाना जा सकता था बुद्ध को.
One Buddhist text talks about the Bodhisattva, who's the one on the way to enlightenment, as holding to nothing whatsoever.
तो एक बौद्ध ग्रंथ में बोधिसत्व के बारे में कहा जाता है कि वो ऐसा व्यक्ति है जिसने किसी भी चीज को पकड़ के नहीं रखा है, वो किसी से आसक्त नहीं है.
The Buddha didn't identify himself through any conditioned phenomenon.
तो किसी भी संस्कारित बात के माध्यम से बुद्ध को नहीं पहचाना जा सकता.
He didn't identify himself with any of the skandhas that we looked at yesterday.
तो किसी भी स्कंधों के माध्यम से बुद्ध को नहीं बताया जा सकता.
He didn't even identify himself with being a human being.
तो बुद्ध किस इंसान के नाते भी अपनी पहचान नहीं बता सकते थे.
He didn't identify himself with anything of a conditioned kind.
तो कोई भी चीज जो संस्कारित है उसके माध्यम से उसके तौर पे वो अपनी पहचान नहीं बता सकते.
This is not just a trick of language.
तो ये सिर्फ भाषा का एक प्रयोग नहीं है.
He didn't see himself like that.
और वो अपने आप को उस स्वरूप में नहीं देख रहे थे.
If you like, he didn't see himself as anything at all.
तो अगर आपको पसंद हो तो वो किसी भी चीज की तरह अपने आप को नहीं देख पा रहे थे.
He described himself once as a man of nothing.
तो मतलब उन्होंने एक बार अपना वर्णन ऐसे ही किया कि किसी भी चीज से ना बना हुआ इंसान.
That meant he was not hanging on to anything as I.
तो इसका अर्थ ये होता है कि वो किसी भी चीज को मैं कहकर नहीं बता रहे थे.
Well, you think if you were completely detached, you'd see everything absolutely clearly.
तो जब आप पूरी तरह से अलग स्थिति में होते विलग होते हो तो आप see everything else?
Absolutely clearly.
आप बहुत ही सुस्पष्टता से चीजों को देखते हैं.
एकदम सुस्पष्ट.
एकदम सुस्पष्ट.
And you just see it.
आप सिर्फ उसे देखते हैं.
Usually our identification distorts what we see.
तो जिस चीज के साथ हम संबंधित या महसूस करते हैं या अपनी पहचान को जोड़ते हैं वो चीजों को टेढ़ा मेढ़ा कर देता है.
If I'm identified with being English, I'll see you all as a bunch of foreigners.
तो अगर मैं अपने आप को अंग्रेज की पहचान के साथ जोड़ लेता हूँ तो मैं आप सबको विदेशियों की तरह देखूंगा.
Even though we all know that, and of course we all know that foreigners are stupid.
और हम सभी जानते हैं कि विदेशी लोग जो हमेशा मूर्ख होते हैं.
That's what happens. You identify with something yourself, and then you compare yourself with others.
तो आप किसी चीज को अपनी पहचान समझ लेते हैं और फिर आप किसी और चीज के साथ अपनी तुलना करने लगते हैं.
And yet, माफ करो, that's what my ancestors did.
और मेरे पूर्वजों ने भी ऐसा ही कुछ किया.
And of course, they didn't see what Indians were really like.
और उन्होंने निश्चित ही देखा नहीं कि भारतीय कैसे होते हैं.
I was just reading a book review of a new book about the American Civil War.
तो अमेरिकन जो नागरी युद्ध हुआ था उसके बारे में एक किताब लिखी गई थी उसे मैं पढ़ रहा था.
And the leaders of the Confederacy, the southern states, were arguing in favor of slavery.
तो जो दक्षिणी दिशा के जो नेता लोग थे वो गुलामी के बाजू से बात कर रहे थे.
And they said, well, the whites, white people are a superior race.
और उन्होंने कहा कि सफेद लोग जो होते हैं उजले लोग जो होते हैं वो उच्च वर्णीय होते हैं.
So it's right that they should dominate.
तो ये बहुत सही है कि वो प्रमुख स्थान पे होने चाहिए.
So of course they never found out what black people were really like.
और फिर इसलिए उन्होंने कभी ये जान नहीं पाए कि फिर काले लोग या गहरे लोग कैसे होते हैं.
You can think of so many examples.
और ऐसे आप बहुत सारे उदाहरणों के बारे में सोच सकते हैं.
You hold on to a position, you identify yourself, and that distorts your experience.
तो जिस चीज के साथ अपनी पहचान को आप जोड़ लेते हो उसके साथ अपने आप को जकड़ लेते हो और आप अपनी आजू बाजू की सारी चीजों को तोड़ मरोड़.
The Buddha is completely free of that sort of identification.
तो इस प्रकार की पहचान से बुद्ध बिल्कुल ही मुक्त थे.
So he's completely objective, you might say.
और फिर इसलिए वो काफी वस्तुनिष्ठ थे.
And so he saw things as they are.
और इसलिए चीजें जो जैसी है उसे वो वैसा ही देखते थे.
And he saw them as conditioned.
और वो देख रहे थे कि चीजें संस्कारित हैं.
Everything that arises, arises in dependence on conditions.
तो जो भी निर्मित होता है वो परिस्थितियों के आधार पर निर्मित होता है.
But he saw within that conditioning a progressive possibility.
लेकिन उस संस्कारितता के भीतर भी उन्होंने देखा कि एक विकास की संभावना है.
And that progressive possibility linked us as we are now with where he is.
तो वो जो विकास की संभावना है वो एक संबंध स्थापित करती है जहां हम हैं और जहां वो है उन दो स्थितियों के बीच में.
So how to use that, we'll try and work out this afternoon.
लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे करना है ये हम आज दोपहर को देखेंगे.
I'll see if I can think up how to do it.
और कैसे बताना है या किसके बारे में मैं सोचूंगा.
Thank you.